ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रीमद्भागवतम स्कंदाट अध्याय का श्लोक संख्या 18। तथा विहितान वीक्ष तथा वसितान वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि या मयि परिवृतो देवै हत्वा अशास्त्रपिष्टप। तथा वसितान वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरि या मयि परिवृतो देवै हत्वा अशास्त्रपिष्टप। तान् तथा वसितान् वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरि या मयि परिवृतो देवै हत्वा अशास्त्रपिष्टप। हत्वा अशास्त्रपिष्टप तथा वसितान् वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि या मयि परिवृतो देवै हत्वा अशास्त्रपिष्टप। तथा वसितान् वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि या मयि परिवृतो देवै हत्वा अशास्त्रपिष्टप। तथा वसितान् वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि या मयि परिवृतो देवै हत्वा अशास्त्रपिष्टप। सिद्धार्थ तान असुरों तथा राक्षसों को तथा इस प्रकार अवस्थितान जो स्वयंभू मनु को निगलने के लिए कृत संकल्प थे। भिक्षा देखकर, यज्ञ भगवान विष्णु जो यज्ञ कहलाते हैं, सर्वगत हर एक के हृदय में स्थित हरि भगवान, यामई याम नामक अपने पुत्रों के साथ परिवृत घिरा हुआ देवई देवताओं से, हत्वा असुरों को मारकर, असासत इंद्र पद ग्रहण करके शासन चलाए, त्रिपिष्टपम स्वर्ग लोकों का अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभू मनु को निगल जाने वाले हैं। इस प्रकार याम नाम के अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे। दोहराइए, प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभू मनु को निगल जाने वाले हैं। इस प्रकार याम नाम के अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे। तात्पर्य, देवताओं के विभिन्न नाम यथा ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि व्यक्तिगत नाम नहीं है, वे विभिन्न पदों के नाम हैं। इस प्रसंग में हमें पता लगता है कि इन पदों को ग्रहण करने योग्य उपयुक्त व्यक्तियों के न होने पर भगवान विष्णु कभी ब्रह्मा बनते हैं तो कभी इंद्र भी बन जाते हैं। इतना तात्पर्य है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि स्वयंभू मनु जो आदि मनु हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु का कार्यकाल 71 युग होता है, 71 चतुर्युग। और हर मनु के शासन काल में भगवान का अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। जैसे हर युग में भगवान अवतार लेते हैं उसको युगावतार कहते हैं। युगावतार, मनवंतरा अवतार, सत्तावेशावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, भगवान के अनेक अवतार हैं। नाना अवतार, मकरोद भुवनेश किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो, भगवान नाना अवतार लेते हैं लेकिन मूल कृष्ण ही हैं। कृष्ण ही समस्त अवतारों के उत्स हैं, इसलिए नाना अवतार मकरोद भुवनेश किंतु कृष्णा स्वयं संभवत, भगवान के अनेक अवतार हैं, विविध अवतार हैं, विविध कार्यकलाप हैं और विविध रूप भी हैं। और इस भुवन में या त्रिभुवन में या अनंत ब्रह्मांड में भगवान अपनी अनंत लीलाएं करते हैं भिन्न भिन्न रूपों में, लेकिन भगवान फिर भी एक रहते हैं। भगवान बहुत नहीं है, बहुवचन नहीं है। यहाँ पर लोग कहते हैं भगवान, आप किस भगवान को मानते हैं? पहले पूछते हैं, हम तो ये भगवान को मानते हैं। भगवान एक ही है, लोगों अज्ञानता है कि लोग सोचते हैं भगवान भी अलग अलग हैं। ये अपने अपने हिसाब से लोग भगवान बना लेते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग अपनी सुविधा देख करके भगवान बन भी जाते हैं। लोग किसी का कोई धंधा चौपट हो गया, कोई साधन नहीं है, तो भगवान बन करके काम चलाने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखते हैं कि भगवान बनने में बहुत फायदा है। भगवान बन जाएंगे तो बहुत लोग सम्मान देंगे, धन देंगे और जस भी हो जाएगा, तो भगवान बन जाते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे अपनी सुविधा, अपने लाभ के लिए जो लोग भगवान बन जाते हैं और जो उनको मानने वाले भी मान लेते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, मैं इनका पुजारी हूं, तो ऐसे दोनों लोग नरक में जाते हैं। जो भगवान बनते हैं और जो उनके मानने वाले, दोनों नरक में जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो ऐसे सारे भगवान लोगों को फांसी पर झूला देता। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमारी सरकार होती तो ऐसे जो तथा कथित भगवान हैं कि मैं भगवान हूं, तो सारे भगवान को फांसी पर झूला देते हैं। तो इस अध्याय में हम देखें कि भगवान वास्तव में एक ही है। भगवान 10, 20, 50 नहीं होते हैं। एकला ईश्वर कृष्ण आर सभृत जे जैसे चाहे थे तैसे करें। ये कहीं भगवान हैं, भगवान एक हैं, एको अहम बहुश्यामी। भगवान कहते हैं मैं एक हूं, लेकिन फिर भी भिन्न भिन्न अवतार ग्रहण करता हूं और भिन्न भिन्न लीला करता हूं। एको अहम बहुश्यामी द्वितीय नास्ते। भगवान फिर कहते हैं कि एको अहम बहुश्यामी, मैं एक भी हूं और एक में अनेक भी हूं, लेकिन फिर भी दो नहीं हूं, द्वितीय नास्ते। भगवान दो नहीं है। आजकल लोग समझते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है, हमारा भगवान बड़ा है, ऐसे करके लोग ये करते हैं। कोई बोलता है कि हमारा अल्लाह सर्वशक्तिमान है, कोई कहता है गॉड सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ऑल माइटी। लोग पढ़े थे भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान का अर्थ ही होता है सदैश्वर्य परिपूर्ण, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य है वो भगवान है। तो भगवान अल्लाह या गॉड, इसका एक ही मीनिंग होता है और एक ही वस्तु का नाम अलग अलग है। एक ही वस्तु के अनेक नाम हैं। अनेक नाम से भगवान जाने जाते हैं, अनेक रूप से पूजे जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान एक हैं। उनको क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, फारसी लोग, सिख लोग, हिंदू लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। यहां पर स्वयंभू मनु इस मानव समाज को भगवान का ज्ञान प्रशस्त कर रहे हैं। मनु भगवान कैसे अंशावतार हैं, ये जो स्वयंभू मनु हैं भगवान के अंश अवतार हैं। प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, उस श्लोक में बताते हैं कि मनु मनु पुत्र भी भगवान के अंश अवतार हैं। तो स्वयंभू मनु जो मानव जाति के प्रथम जीव हैं, जो मानवों के पिता हैं, मनुष्य मनुष्य कहलाए। हम लोग बोलते हैं हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य से हमारा आविष्कार हुआ है। मनुष्य मनुष्य जो आगे बढ़ता है या निकलता है उसको मनुष्य कहते हैं। तो मनु महाराज ने मानव के लिए एक शिष्टाचार ग्रंथ लिखा है जिसको मनु संहिता कहते हैं, जिसमें भगवान के अनेक अवतारों का उल्लेख मिलता है या भगवान के विषय में ज्ञान देते हैं। तो स्वयंभू मनु, जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और ब्रह्मा जी के संपूर्ण काल में हजारों मनु होते हैं, जैसे वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु, चाक्षुष मनु, अनेक मनु हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मनुओं का वर्णन है। तो भगवान स्वयं अपनी उपलब्धियों से ये स्वर्गपुर हैं, फिर भी वे संसार के सृष्टा पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार वे कर्म करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। अतः जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। 15 श्लोक में कहा गया है। 16 श्लोक भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से पूर्ण एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं। इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूं कि वह उनका अनुसरण करे। कौन कह रहा है? श्लोक में कौन कह रहा है? तो मनु महाराज मानव जाति के पिता हैं और मानव समाज के लिए उन्होंने बहुत सुंदर एक शास्त्र दिया है जिसको वैदिक संविधान भी कहा जाता है। भारत का जो संविधान बना है वो मनु महाराज के संहिता के आधार पर ही बना है। तो श्री भगवान कहते हैं मनुरुवाच, मनु महाराज कहते हैं परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत से उसकी उत्पत्ति हुई हो। जब सब कुछ निस्तब्ध रहता है तो परम पुरुष साक्षी रूप में जगा रहता है। जीव उसे नहीं जानता किंतु सब कुछ जानता रहता है। तो मनु महाराज ये प्रवचन किए हैं। मनु महाराज कह रहे हैं कि हमें भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए कि सारे जीवों के पालन करता, सृष्टा और संहार करता भगवान है। इसलिए भगवान सारे जीवों के हृदय में जो परमात्मा रूप से बैठे हैं वही जीव का नियामक करते हैं, वही जीव को हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। जैसे मनु महाराज स्वयंभू मनु समर्थ हैं, लेकिन फिर भी जब वो समाधि में, इस प्रकार स्वयंभू मनु उपनिषदों के मंत्रों की जो ध्वनि करते हुए समाधि में हो गए, तो उन्हें ऐसा देखकर राक्षसों तथा असुर गणों ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा, अतः उनके पीछे द्रुत गति से दौड़ने लगे। मनु महाराज मतलब स्वयंभू मनु मानव जाति को उपदेश दे रहे हैं कि हमें भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान ही जीव के परम रक्षक हैं और पोषक हैं, इसलिए वही शरणीय हैं, वही आश्रय लेने के योग्य हैं। तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनु महाराज जैसे समर्थ व्यक्ति भी परम संकट में आ गए थे, उनको असुर लोग राक्षस लोग खाने के लिए जा रहे थे। राक्षस और असुर यहां दो शब्द आया है। उनको तो राक्षसों तथा असुर गण अत्यंत भूखे थे, तो उनको खाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन भगवान सबके हृदय में अर्थात मनु के हृदय में भी भगवान है, तो देखे कि मनु को अब निगलने वाले हैं, तो ही मनु के हृदय में जो भगवान है वही प्रकट हो गए यज्ञ पति के रूप में। भगवान हमारे हृदय में हैं तो हमारी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान विष्णु रूप में थे और उन्हीं का ध्यान ध्रुव महाराज कर रहे थे। ध्रुव महाराज जब विष्णु का ध्यान कर रहे थे तो वही विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। फिर भी ध्रुव महाराज अपने नेत्र नहीं खोल रहे थे, अंतर्दृष्टि में जो भगवान का दर्शन कर रहे थे उस मूर्ति को भगवान ने तिरोहित कर दिया। तब ध्रुव महाराज आंख खोले तो भगवान को बाहर देखे। तो भगवान अंतर बहिर्वस्थित है। कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में करते हैं कि भगवान जो अंदर हैं वही बाहर भी हैं। अंतर बहिर् भगवान बाहर भी हैं और अंदर भी हैं, लेकिन सब प्राणी उनको नहीं देख पाते हैं। अलक्षम सर्वभूतानाम, हमारे दृष्टि से भगवान ओझल रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो जैसे ही स्वयंभू मनु ध्यान में बैठे उपनिषद के मंत्रों का पाठ करके, उपनिषद उप मने समीप, जो भगवान के स्वरूप को ध्यान करके उनके समीप बैठ जाता है, या जो भगवान परमात्मा रूप से हमारे हृदय में बहुत समीप हैं, भगवान हमारे एकदम नजदीक हैं, भगवान से नजदीक और कोई नहीं है, इसलिए भगवान को सुहृद कहा गया है कि भगवान हमारे सबसे निकट के सुहृद हैं, क्योंकि हमारे बिल्कुल हृदय में चिपके हुए हैं, बिल्कुल नजदीक हैं, उतना नजदीक कोई नहीं रह सकता है। इसलिए जो स्वयंभू मनु के हृदय में भगवान थे वो देखे कि अब स्वयंभू मनु को राक्षस असुर खा जाएंगे। राक्षस वह है जो मनुष्यों को गायों को किसी को भी खा जाए, वो राक्षस है। जो सब कुछ खा जाता है वो राक्षस है। जो नर भक्षी हो या पशु भक्षी हो या कीट पतंग, जो सब कुछ खा जाता है वो राक्षस है। तो ऐसे राक्षस मनु को जब खाने के लिए दौड़े तो भगवान स्वयं उनके हृदय में परमात्मा रूप से जो भगवान थे वो यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का एक नाम है यज्ञ, या यज्ञपति, धरापति, ब्रह्मांडपति, तिरुपति। भगवान सब जीवों के पति हैं। भगवान सबके पति हैं, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबका पति हूँ, पितामह से जगतो धाता माता पितामह। भगवान सबके पति हैं, भर्तार हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। तो मनु को रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, इसलिए यहाँ सर्वगतो हरि हरि शब्द है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यज्ञ सर्वगतो हरि, सर्वगतो माने जो हर जगह व्याप्त है, सर्वगत चर में अचर में अंडज में पिंडज में स्थावर में जड़ में जंगम में हर रेणु रेणु में तस्रेणु में अणु से लेकर के परमाणु में जो व्याप्त है, अंडांतरस्थ परमाणु से अंतरस्थम, वही यज्ञपति भगवान हरि जो समग्र बाधाओं को हर लेते हैं, जो समग्र विघ्न बाधाओं को हर ले वो हरि है। इसलिए हरि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वयंभू मनु के ऊपर जो है महान संकट आया तो भगवान हरि रूप में उनके बाधा को हर लिए, समग्र बाधा को हर ले हरि है। सर्व अमंगल हरे, जो सर्व अमंगल को हर लेता है हरि है, और जो हर जगह व्याप्त है सर्वगत 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 माने हर एक के हृदय में, हर एक के हृदय में जो रहता है। तो भगवान सबके हृदय में क्यों रहते हैं? सबके हृदय में इसलिए रहते हैं कि हर प्राणी अलग अलग इच्छा करता है, तो उसकी इच्छाओं को तुरंत समाधान करते हैं। या भगवान सबके साथ इसलिए रहते हैं कि भगवान सबके पालक हैं, पालन करने वाले हैं, इसलिए उसके दम नजदीक रहते हैं। या भगवान कहे कि मैं सबका मित्र हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका मित्र हूँ, सबका बंधु हूँ, सबका माता पिता, इसलिए भगवान हमेशा चिपके रहते हैं, हर प्राणियों के हृदय में चिपक कर रहते हैं, उससे आत्मीयता रखते हैं। भगवान जीव के परम सुहृद हैं और सबसे आत्मीय स्वजन है, इसलिए सर्वगत सब प्राणियों में रहते हैं। भगवान जैसा और कोई मित्र नहीं है, भगवान जैसा और कोई कृपालु नहीं है। जीवों के प्रति इतना औदार्य भाव में है, उदार भाव में है कि हर जीव के हृदय में एकदम मिलकर रहते हैं, गले लगाकर रहते हैं। इसलिए भगवान सारे प्राणियों से आह्वान करते हैं कि मेरी तरफ आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान गीता में आह्वान करते हैं कि मेरे शरण में आओ। जीव भगवान के नजदीक होते हैं फिर भी जीव भूल जाता है, भगवान हमेशा उसके साथ में सोते हैं बैठते हैं फिर भी भूल जाता है, विस्मृत हो जाता है। तो भगवान फिर भी आह्वान करते हैं। जैसे एक भक्त प्रवचन कर रहे थे तो कहे कि भगवान सबके पति हैं, तिरुपति हैं, संसार के पति हैं, अनंत ब्रह्मांड के पति हैं। तो तिरुपति बालाजी क्या करते हैं? एक हाथ अपने चरण में ऐसे करते हैं, बालाजी का हाथ ऐसे ही है ना, एक हाथ अपने चरण की तरफ इंगित करते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मा मे कम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, मा मे कम। बहुत बहुत लोगों के शरण में जाते हैं लोग, यहाँ काम नहीं बना तो वहाँ, एक जगह काम नहीं हुआ तो चलो अब वहाँ चलते हैं। कोई बोल देता है वैष्णो देवी जाने पर काम बन जाता है तो कृष्ण मंदिर में आना बंद कर देते हैं, चलो वहाँ जाते हैं। ये वहाँ भी काम नहीं बनता तो कोई बोल देता है कि आप एक काम करो, एक दक्षिण भारत में कल्कि भगवान आए हैं वहाँ जाओ, वो तो भभूत दे देते हैं काम बन जाता है, तो चलो अब वहाँ चलते हैं। रतिराम प्रभु कहते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। आदमी भगवान को भी चलो अभी इनसे काम नहीं, अभी वहां चलते हैं, वहां काम बनने वाला है। कोई बोलता है कि वहां जाने पर वो भभूत दे देते हैं और काम बन जाता है। तो जीव इस तरह से भ्रमण कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, एक को छोड़ता है तो दूसरे को बनाता है, वहां भी नहीं तो उसको भी छोड़ देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं गंगा में गए गंगा दास, आज जमुना में गए जमुना दास। गंगा में गए तो गंगा दास बन गए, जमुना में गए तो जमुना दास बन गए, लेकिन फिर भी भगवान जीव को कभी छोड़ते नहीं है। भगवान को जीव छोड़ देता है, जीव भूल जाता है। अनादि कर्म फले परिभवानवा जले, और कैसे देखी देखी मारे ना उपाय। अनादि काल से जीव जो है इस भवारणों में गिरा हुआ है, लेकिन बिना भगवान के कृपा के वो इससे पार नहीं पा सकता है। चाहे जितना भी हम दौड़ लें यहां वहां, लेकिन बिना भगवान के शरण में गए जीव का कल्याण नहीं होगा। इसलिए यहां मनु महाराज ने शिक्षा दिया है कि हर परिस्थिति में जीव का परम कल्याण भगवान से ही हो सकता है। इसलिए भगवान ही हमारे शरण लेने के योग्य हैं, इसलिए भगवान का शरण लेना चाहिए। और हम जिस कैसी जिस परिस्थिति में रहते हैं भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। मनु महाराज जब ध्यान में हो गए तो यह नहीं समझ पाए कि उनको खाने के लिए असुर लोग आ रहे हैं, लेकिन भगवान तुरंत रक्षा करने के लिए आए। भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। जब गजेंद्र को संकट में देख करके देवता लोग उनकी रक्षा करने नहीं आ रहे थे, गजेंद्र महान संकट में थे, ग्राह के द्वारा ग्रसित थे, अब डूबने वाले थे, उनकी रक्षा के लिए कोई नहीं आ रहा था, बल्कि उनके मित्र बंधु पत्नी जो भी परिवार सब भाग गए कि अब ये बचने वाला नहीं है, नाक कान डूबन लागे अब तो जिया हारी, हे गोविंद राखो शरण। अब गोविंद को पुकारा गजेंद्र, उसके जितने भी बंधु बांधव परिवार के सगे संबंधी थे कोशिश किए, अब देखे कि अब ये बचने वाला नहीं है तो बोले चलो ये प्रयास करना बेकार है। बहुत कोई आदमी जब बीमार हो जाता है, बहुत भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि धीरे से बुलाकर बोलता है कि इनका कौन गार्जियन है, तो कान में बोलता है कि ये बचने वाले नहीं है, क्या बेकार प्रयास कर रहे हो, ले जाओ इनको। तो सब लोग बोलते हैं छोड़ो क्या पैसा खर्च करना है, अभी तो मरने वाला है। तो सब लोग चल अपने अपने काम में चल जाते, चलो मरने वाला ही है तो क्या बेकार इससे प्रयास करना है। लेकिन भगवान जीव का साथ देते हैं, बाकी और कोई साथ नहीं देता है। जब आदमी महान संकट में घिर जाता है तो उसका अपना ही जो निकट का संबंधी वो भी साथ छोड़ देता है। सबसे जो जीव के निकट उसके क्या है, ए धन जौवन पुत्र परिजन इपे की आछ परती तीरे, विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुखलो लागे। सही है ना, जो सबसे अपने नजदीक के लोग हैं, पहला नजदीक क्या है, नारी, नारी जो है अपनी पत्नी वो भी साथ छोड़ देती है। जब संकट आता है तो स्त्री भी दूसरा विवाह कर लेती है, चलो अब यहां रहने से फायदा नहीं, विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति में चार चीज की पहचान होती है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परी खहिचारी। विपत्ति में चार चीज की पहचान होती, धैर्य
विपत्ति में बहुत लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कितना धैर्य है, विपत्ति आते बहुत लोग गिर जाते हैं, क्या करें क्या करें समझ में आता है। धीरज धर्म, धर्म भी ऐसे सब लोग हम लोग माला जपते हैं करते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो कुछ लोग माला झोली फेंक देते हैं। एक भक्त आता था मंदिर में, तो पहले माला जपता था, तो एक दिन मैं देखा माला वाला कुछ नहीं, तो मिला कि तुम्हारा माला झोली कहाँ गया, तो बोला कि जब से मैं भजन का संकल्प लिया माला जपने लगा तो हमारा व्यवसाय चौपट हो गया, हमारा धंधा सब घाटा घाटा, इतना घाटा हो गया, घर वाले कहे कि जब से तुम माला झोली लिया है तब से हो रहा, फेंक दो, अरे फेंक दिया। तो विपत्ति में, अरे थोड़ा विपत्ति आया तो फेंक दिया वो। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, मित्र की पहचान भी विपत्ति में होती है और स्त्री की भी। तो वास्तव में जितने भी मित्र हैं संसार में कोई साथ नहीं देता है, सब मतलब के हैं, समय पर कोई आता नहीं है, भाग जाते हैं, ये असली मित्र भगवान है, वो हमेशा साथ देते हैं। भगवान ही सबका सुहृद है, वही मित्र हैं। अंत में गजेंद्र को भगवान आए उबारने के लिए, गजेंद्र के जितने भी बंधु बांधव थे सब भाग गए, अंत में भगवान रक्षा किए। तो इस तरह से भगवान हमारे सबसे वही करीबी के रिश्तेदार हैं, वो सबसे नजदीक हैं, एकदम हृदय में हैं, पास में हैं, और बहुत दूर भी हैं। भगवान के विषय में कहा जाता है कि भगवान हमारे बहुत नजदीक हैं तो बहुत दूर हैं। सूर्य हमारे से बहुत दूर हैं, लेकिन उनकी शक्ति प्रकाश सुषमा के रूप में नजदीक भी हैं। तो ऐसे जो बहुत नजदीक भगवान हैं, उन भगवान का जैसे ही ध्यान में बैठे मनु महाराज, तो उनको खाने के लिए असुर आ गए। एक भक्त थे, शिव जी के एक भक्त थे, तो प्रतिदिन बड़ा लोटा में पीतल के या कासा के लोटा में जल बेल पत्र लेकर शिव जी को चढ़ाते थे, और शिव जी को चढ़ा करके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते थे आंख बंद करके, तो जप रहे थे। लोटा पहले बहुत बड़ा होता था, 2 किलो का, महंगा होता था, कासा का, अष्ट धातु का भी महंगा महंगा लोटा होता। तो एक गांव का चोर व्यक्ति था, तो वो उसका नजर उस लोटे पर लगा था कि बहुत सुंदर लोटा है। तो एक दिन देखा कि जब ये पूजा बेलपत्र जल चढ़ा लेते हैं तो आंख बंद करके ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो इसी समय हम इनका लोटा चुरा सकते हैं। जैसे कि देवता स्वयंभू मनु ध्यान में जब आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे तो असुर लोग उनको खाने के लिए, तो वो शिव जी के भक्त ध्यान में जब जप कर रहे थे तो चोर जो है पांव दबाते दबाते आया और उनका लोटा लेकर धीरे से पार हो गया। जब ओम नमः शिवाय का जाप कर लिए तो देखे कि लोटा नहीं है, लोटा जो है गायब हो गया। लोटा समझते हैं ना आप लोग, लोटा। तो बड़ा उनको चिंता हो गई, पूजा का लोटा रखे थे, उसी से पूजा करते थे। कभी कभी लोग पूजा के लिए अलग लोटा रखते हैं, गांव में एक ही लोटा से बहुत लोग सब काम कर लेते हैं, उसी लोटा में पानी पी लेते हैं, उसी लोटे में जो शौच भी हो आते हैं उसी लोटे को मिट्टी लगा करके धोकर उसी से पूजा भी कर लेते हैं। गांव में लोग कहां उतना थे, एक ही धोती को धो करके कोपिन पर नहा लेते हैं और जब सूख जाता है तो उसी को पहन लेते हैं कम वस्तु में। गांव में ऐसे भी बहुत लोग हैं, कम आवश्यकताएं हैं, एक धोती है एक कोपिन है। नदी किनारे गए, कोपिन पर हो गए और धोती को खोलकर धोकर डाल दिए, जल्दी सूख जाता है। कोपिन पर नहाकर फिर वही धोती को पहन लिए और एक कहीं लोटे में सब क्रिया कर लेते हैं। जैसे खोला बेचा सिरधर एक लोटा रखे थे, एक ही लोटा से वो सब काम करते थे। गरीब थे तो उसी अल्मुनियम के लोटे में पानी लेकर शौच के लिए जाते थे, लैट्रिन करने जाते थे, उसी लोटे को मिट्टी से शुद्ध करके स्नान करते थे और उसी लोटे से जलपान करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए और गए तो उसी लोटे में मुंह लगाकर पानी पीने लगे। खोला बेचा सिरधर कह कि ये तो बड़ा गलत हो गया, ये आपके योग्य नहीं, ये लोटा तो मैं टॉयलेट के लिए यूज करता हूं। चैतन्य महाप्रभु के कि ये लोटा में गंगा का निवास है, जो भक्त है उनका हर वस्तु जो है शुद्ध रहता है। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतो पिवा या स्मरेत पुंडरी का क्षम सहबायाभ्यंतर सुचि। जो भगवान का हमेशा नाम जप करता है, जो भगवान को अपने हृदय में जो हमेशा वहन करता है, वो उसका हर चीज शुद्ध हो जाता है नाम जप करने से। अब बहुत लोग 13 लोटा रखे हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं जपते हैं, बहुत सामग्री है, ये है वो है, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं करते हैं। तो 13 लोटा रखने से क्या होगा, ये कहीं लोटा है लेकिन वो भगवान का भक्त है। ये कहीं लोटा, ये कहीं नगोटा, ये कहीं सोटा, उसी में अगर भगवान का भक्ति करता है तो वही वास्तव में धनी है, वही अमीर है। तो सिरधर कहे कि आपके योग्य नहीं है, तो चेतन महाप्रभु कहे कि अरे तुम इतने गरीबी में रहते हो, कम से कम घर को सजा लो, इसको छत बना लो, छत भी ढाल लो, केवल दीवार था छत नहीं था। तो खोला बेचा सिरधर के कि जो भगवान के शरणागत हो जाता है सर्वतो भावे न, संपूर्ण रूप से जो भगवान को अंगीकार कर लेता है तो उसको और कोई वस्तु की स्पृहा नहीं रहती है, उसकी सारी कामना नष्ट हो जाती है, कोई इच्छा नहीं होती है, कोई वस्तु रखने की कामना नहीं होती है। जो सर्व तरह से भगवान को ही समर्पित हो जाता है तो कोई वस्तु की कामना नहीं करता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो कहे कि छत की क्या जरूरत है, जो भगवान के छत्र छाया में रहता है उसको और छत की क्या जरूरत है। जो भगवान का आश्रय ले लिया है तो उसको और कोई आश्रय की जरूरत नहीं है, भगवान जो है वही आश्रय लेने योग्य है। अब भगवान हर परिस्थिति में, जैसे यहां हरि यज्ञ सर्वगतो हरि, भगवान हरि रूप में स्वयंभू मणि के ऊपर संकट को दूर कर दिए, स्वयं प्रकट हो गए, विलंब नहीं किए। भगवान अपने भक्त के लिए विलंब नहीं करते हैं, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभू मनु को निगल जाने वाले हैं, इस प्रकार याम नाम के अपने पुत्रों तथा देवताओं के साथ उन असुरों को मार दिए। और इसके बाद फिर भगवान स्वर्ग के राजा बन गए, इंद्र बन गए। भगवान कभी कभी इंद्र का भी पद संभालते हैं, ब्रह्मा का भी। कभी कभी योग्य कोई व्यक्ति नहीं होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा इंद्र का पद संभाल लेते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ देवताओं के विभिन्न नाम यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि व्यक्तिगत नाम नहीं है, ये पद है। जैसे ब्रह्मा जी का पद है, ब्रह्मा एक पद है, इंद्र का पद है। तो कभी कभी कोई योग्य उम्मीदवार नहीं होता तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के रूप में कार्य करते हैं, इंद्र के रूप में। यहाँ यज्ञ भगवान इंद्र का पद संभाले, इसलिए कभी कभी ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मा कहा जाता है, इंद्र को भगवान इंद्र कहा जाता है। माने कभी कभी भगवान स्वयं इंद्र बन जाते हैं, इसीलिए भगवान इंद्र कहलाते हैं। हमेशा नहीं, किसी किसी मन्वंतर में स्वयं भगवान गुणावतार के रूप में ब्रह्मा का कार्य करते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तथा पृथगस्थ हेतु यह संभूताम अपि तथा समुपैति कार्याद। जैसे दूध दही बन जाता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तथा पृथगस्थ हेतु यह संभूताम अपि तथा समुपैति कार्याद। कुछ कार्य विशेष परिस्थिति में स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा आदि बन जाते हैं, विशेष इमरजेंसी में। जैसे दूध जो है दही में रूपांतरित हो जाता है, दूध जो है दही के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यथा क्षीरम यथा दधि विकार। लेकिन दही दूध नहीं बन सकता है, दही को दूध नहीं बना सकते, दूध दही बन सकता है। उसी तरह भगवान जो है मूल हैं, दूध हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। शिव ब्रह्मा इंद्र के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो वही आगे चल करके अग्नि के पुत्र के रूप में, स्वारोचिस के रूप में, दूसरा मनु के रूप में आते हैं। उनके अनेक पुत्रों में द्युमत, सुषेण तथा रोचिस्मत प्रमुख थे, मनु और मनु पुत्र। मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरा ऋषयो शास्तारश्च हरेर साडी बधम उच्यते। भगवान के अनेक अवतार हैं, मनु, मनुपुत्र, स्वर्ग लोकों का राजा तथा सप्तर्षि, ये सभी भगवान के अंशावतार हैं। स्वयं मनु, उनके पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद, दक्ष द्वारा उत्पन्न देवता तथा मरीचि जैसे ऋषि, ये सभी स्वयंभू मनु के राज्य काल में भगवान के अंश अवतार थे। उस काल में भगवान के अवतार यज्ञ ने स्वर्ग लोकों के शासन का राज्यभार संभाला। अगला मनु स्वरोचिस थे। अगले 11 श्लोकों में मनुओं, ऋषियों तथा देवताओं का और भी विस्तृत वर्णन हुआ है। तेईस श्लोक में प्रभुपाल लिखते हैं मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वर, ये भी भगवान के अंश अवतार हैं। मनु, मनुपुत्र और इंद्र और सप्तर्षि, ये भी भगवान के अवतार अंशावतार कहे जाते हैं। इस तरह से भगवान जीवों को का पालन करते हैं और उपदेश देते हैं। भिन्न भिन्न मनवंतर में मनु के काल में भगवान का अवतार होता है, जिसे मनवंतर अवतार कहते हैं। तो आगे के श्लोकों में और भी मनुओं के विषय में आप सुनेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न, जिज्ञासा? हाँ, इनको माइक दीजिए।
हरे कृष्ण। तो ये आपका
ब्रह्मा जी का नाम क्या है? अभी इस समय जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ये चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं। ये जो ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं। अब इनका नाम चतुर्मुखी ही जाना जाता है, नहीं तो चार कुमारों के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इस श्लोक में यही जाने जाते, चतुर्मुखी ब्रह्मा या चार कुमारों के पिता। ऐसे तो ब्रह्मा जी के भिन्न भिन्न नाम हैं, जैसे उनके पुत्रों के नाम से भी जाने जाते हैं, या चार मुख हैं तो चार मुख वाले ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं। उनका पूर्व का नाम भी होगा, ये मुझे पता नहीं। पूर्व ब्रह्मा बनने से उनका क्या नाम था, वो देखिए, आप देखकर बताइएगा। हाँ बोलिए।
हरे कृष्ण। तो जी आपने एक लोटा की कहानी बताई,
लोटा वाला कहानी। हाँ,
तो वो क्या, वो वहीं पर चोर चुरा कर ले गया? तो
चोर चुरा कर जब ले गया
वहीं समाप्त हो जाती है कि
आगे आगे का भी है? वो मैं भी भूल गया था। तो चोर चुरा कर ले गया, तो ऐसे वो बेचारा जो पुजारी था, फिर बड़ा धर्म संकट में पड़ गया दूसरे दिन पूजा के लिए। तो पुजारी ने सोचा कि अब ऐसा महंगा लोटा नहीं रखूंगा, तो जस्ता का लोटा दूसरे दिन से अल्मुनियम का लोटा ले आया कि चोरी भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। वो जो लोटा था महंगा था, तो चोरी हो गया तो दूसरे दिन से जस्ता अल्मुनियम का लोटा लेकर पूजा करता था। जैसे कभी लोगों के गले में चेन है, बाली है सोने का, चोरी हो जाता है। ट्रेन में हम देखे थे, एक माताजी सोने का बाली पहनी थी, जैसे ट्रेन स्लो स्टेशन पर आने से पहले स्लो हो रही थी, तो एक चोर जो है उसको झपट करके कान को ऐसे नोच करके कूद गया। जैसे ट्रेन स्लो हुई, स्टेशन आने में स्लो होती है ना, तो माताजी का कान पूरा फट गया, लहूलुहान हो गया चोर बाली को लेकर। बाद में लोग पकड़ लिए, जब माताजी ने चिल्लाई तो बहुत सारे लोग उसको पकड़ करके तो बहुत धुलाई किए। तो जो चोर था वो चोरी तो कर लिया, लेकिन वो बेचारा भक्त पूजा करने लगे, चोर के मन में स्प्रिहा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना, उसके मन में अंदर से प्रेरणा आने लगी। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन बीता, तो चोर अंत में आकर के वो अपना गलती कबूल कर लिया कि भाई मैंने ये किया, अच्छा नहीं किया। शायद भगवान उसके मन में प्रेरणा की कि ऐसा काम क्यों किया, या शिव जी ही प्रेरित किए होंगे। तो चोरी से धीरे से आकर के लोटा, जब वो आंख बंद करके कर रहे थे तो लोटा रखकर भाग गया वो चोर जो है। और ये बात तो चोर ही हमसे कह रहा था, इस बात को जो चोर किया वही हमसे बता रहा था एक बार कि ऐसा मैं चोरी किया, कहा कि मुझे फिर अच्छा नहीं लगा कि ये पूजा कर रहा था, मैं चोरी भी किया तो ऐसा पुजारी का नहीं करना चाहिए। भगवान सबके हृदय में है, तो ध्यान में थे तो रह करके भाग गया था। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त का खोया हुआ भी सामान वापस ला दिए। एक बार हम एक चोर जो है यहाँ सच्ची घटना एक और बता रहा हूँ। एक बार यहाँ हम लोग के लाइफ मेंबर का जो मैराथन होता था दिसंबर में, तो लाइफ मेंबर का मैराथन में सबको प्राइज मिलता था। तो जितने भी लाइफ मेंबर के प्रीचर थे 91 में, सबको बहुत सुंदर लाल इमली का चादर मिला था, तो हमको भी मिला था महंगा। उस समय 600 रुपया कीमत था 91 में, तो सब प्रीचरों को गिफ्ट में मिला था। सब मैराथन किए थे, अभी केवल गीता का मैराथन होता है, लेकिन पहले लाइफ मेंबर का भी मैराथन होता था। कौन अधिक मेंबर बनाया, दिसंबर में होता था या जनवरी में होता था, जो अधिक मेंबर बनाता था उसको विशेष प्राइज मिलता था। तो जो हमको चादर मिला था उसमें एक जैसा ही सब चादर था, तो चादर के काउंटर में टेलर से मैंने लिखवा दिया था असीम कृष्णदास जुहू मुंबई, एस्कॉन जुहू मुंबई असीम कृष्णदास। तो चादर एक दिन चोरी हो गया आश्रम से। पहले उधर एक बिल्डिंग था जिसमें राधा कृष्ण साउथ इंडियन रहते थे, ए ब्लॉक या कोई ब्लॉक ऐसे था कि एफ ब्लॉक था, तो चोरी हो गया। तो चोरी हो गया तो मैं एक आदमी कहा कि आप ऐसा करिए, आश्रम में बोल दीजिए कि भाई मैं चावल लाने वाला हूँ। एक तांत्रिक चावल देता था, जैसे चतुर्भुज प्रभु लाए थे, उनका होटल में चोरी हुआ था तो चावल खिलाए, तो जो लिया था वो पकड़ में आ गया था। तो मैं भी कहा कि जो भी चादर लिया होगा मैं चावल लाने वाला हूँ, सबको खिलाऊंगा। तो वो चोर को भय हो गया। वो चोर अकेले में आकर हमसे कहा कि प्रभु जी गलती हो गई, किसी को बोलिएगा मत, मैं ही आपका चादर ले गया हूँ, और किसी को मत बोलिएगा। मैं गलती से मेरा भी चादर चोरी हो गया था, मैं समझा कि मेरा ही चादर हो गया, लेकिन बाद में आपका नाम देखा तो किसी को मत बोलिए, मतलब ठीक है, तैसे दे दिया। तो भगवान कभी कभी चोर को भी प्रेरित करते हैं, वो दे देता है सब। और कोई तो
कृष्ण प्रभु जी, श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग 35वां श्लोक में अर्जुन पूछते, अथ एन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। इस दुनिया में अच्छे आदमी लोग बुरे काम क्यों करते हैं? जवाब में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यहीनम वैरिणम। काम और क्रोध वैरी है इस जन्म में, तो साधक काम और क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हरे कृष्ण।
अर्जुन बहुत सुंदर प्रश्न किए कि अथ केन प्रयुक्तोयम पाप चरति पुरुष। ऐसे लगता है कि बला दिव नियोजित, आदमी पाप नहीं करना चाहता है, फिर भी लगता है कोई उसे बलपूर्वक पाप में लगा देता है। अथ केन प्रयुक्तोयम, क्यों जीव को ऐसा महसूस होता है कि अछिन्न पी वाषणया, इच्छा नहीं होने के बावजूद भी आदमी पाप में क्यों प्रयुक्त हो जाता है? जैसे लगता है कि बला दीवन कोई उसे बलपूर्वक लगा देता है। तो भगवान वही उत्तर दिए जो आप बताए कि काम ये स क्रोध है स रजो गुण समुद्भव। काम क्रोध काम अनेक कामनाओं से जीव होता है, उस कामनाओं में व्यतिरेक होता है तो क्रोध होता है। रजोगुण रजोगुण से प्रभावित होकर के कामनाएं होती हैं, कामनाओं की पूर्ति में होता है तो क्रोध होता है, इसके चलते जीव जो है पाप करता है, यही उसको प्रेरित करता है कामना। जैसे किसी को भूख लगी है, जैसे यहां जब भूख लगी असुरों को तो खाने के लिए मनु को अपना ग्रास बनाने लगे। कभी कभी आदमी को भूख लगती है, जैसे एक बार भीमा प्रभु बता रहे थे कि अमेरिका में वीकेंड में एक लिफ्ट बंद हो गया था, ऑफिस सब बंद हो रहा था, उसी समय लिफ्ट में कोई खराबी आ गई तो उसमें दो चार लोग बंद रह गए। और दो दिन सैटरडे संडे होलीडे था तो वो लोग लिफ्ट से प्रयास के ना निकल नहीं पाए, तो उसमें से दो तीन लोग मर गए, एक आदमी जीवित था। उसको इतनी भूख लगी कि भूख से मरे हुए मनुष्यों का मांस खाता खाने लगा। तो भूख में अपनी तृष्णा को बुझाने के लिए या कामनाओं के अग्नि में आहुति देने के लिए आदमी पाप करता है, यही भगवान के, इसीलिए भगवान के कि यही सबसे बड़ा शत्रु है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्र महासनो महापापना विधेय बल, यही सबसे बड़ा शत्रु है, इसी को जीतो। हम बाहरी शत्रुओं को जीत लेते हैं लेकिन सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर में है, उसको जो जीत लेता है वही दिग्विजयी है। ऐसे बाहर के शत्रुओं से ज्यादा खतरनाक अंदर हमारे किले में जो शत्रु हैं, आपके किले में शत्रु प्रवेश किए हैं तो वो सबसे बड़ा खतरनाक है। तो हमारे हृदय में जो शत्रु हैं काम क्रोध लोह मोह मद मत्सर, इसको जो जीत लेता है वही वास्तव में योद्धा है। तो इसी को जीतने के लिए भगवान कहे कि तुम उनको जीतो, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।